कमरे में कैमरे की फ्लैश अभी भी जैसे हवा में तैर रही थी। शामली उसी पोज में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब और भारी हो चुकी थीं। उसे लग रहा था जैसे जमीन हल्की हल्की हिल रही हो। उसने धीरे से अपना सिर पकड़ लिया। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, उसने बमुश्किल कहा। जतिन तुरंत उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता का नकली भाव था। अरे, शायद रिंग जल्दी असर कर गई, उसने नरम आवाज में कहा। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। रिलैक्स, मैं हूं ना, उसने जैसे उसे संभालने के बहाने उसके कंधे पर हाथ रखा। शामली ने संतुलन बनाने के लिए खुद को थोड़ा सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। जतिन ने तुरंत उसकी कमर थाम ली। संभलकर वो धीरे से बोला। शामली की पलकों के बीच से दुनिया धुंधली दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद खड़ी है या कोई उसे थामे हुए है। जतिन ने कैमरे की तरफ देखा। एक मिनट, उसने कहा। फिर वो फिर से शामली के सामने आ गया। देखो, पोज ऐसे करना होता है। वो उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके हाथों को हल्के से पकड़कर ऊपर उठाने लगा। ऐसे हाथ रखो, हाँ, थोड़ा सा कंधा ढीला छोड़ो। उसकी उंगलियां बार बार शामली के कंधों और बाहों को छू रही थीं। शामली को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसका सिर इतना भारी था कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। कमरे में खड़े लड़के धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। जतिन फिर बोला, रोहन जरा पास आओ। रोहन फिर उसके पास आ गया। जतिन ने शामली की छुड्डी हल्के से ऊपर उठाई। कैमरे की तरफ देखो, उसकी आवाज बहुत धीमी और नियंत्रित थी। लेकिन तभी जतिन की जेब में रखा फोन बज उठा। कमरे की खामोशी में रिंगटोन तेज सुनाई दी। जतिन ने फोन निकाला। स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मृदुल, उसने धीरे से कहा। उसने कॉल रिसीव किया। हाँ भाई, कुछ सेकंड तक वो फोन पर सुनता रहा, फिर बोला, क्या अभी? उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आई। ठीक है, आता हूँ, उसने फोन काट दिया। कमरे में खड़े चारों दोस्त तुरंत उसके पास आ गए। क्या हुआ, एक ने पूछा। जतिन ने हल्की सांस छोड़ी। भाई बुला रहे हैं, अभी जाना पड़ेगा, चारों एक साथ बोले। अरे यार, अभी? दूसरा लड़का हंसते हुए बोला। और ये लड़की? उसने शामली की तरफ देखा, जो मुश्किल से खड़ी थी। इसे ऐसे कैसे छोड़ दें? तीसरा बोला। इतनी मेहनत से सेटअप किया है, जतिन ने माथा दबाया। मुझे पता है, लेकिन जाना पड़ेगा। उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं नहीं गया तो भाई खुद यहां आ जाएंगे। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक लड़का बोला, ओ, फिर तो निकलना ही पड़ेगा। जतिन ने सिर हिलाया। हाँ, उसने शामली की तरफ देखा। वो अब सोफे के सहारे खड़ी थी और उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। जतिन हल्का सा मुस्कुराया। ये वैसे भी कुछ देर में आते हैं, फिर उसने अपने दोस्तों से कहा। चलो। चारों लड़के धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। जतिन सबसे आखिर में बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर शामली को देखा। उसकी आंखों में वही ठंडी मुस्कान थी। फिर उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। क्लिक। कमरा फिर से खामोश हो गया। अंदर सिर्फ हल्की पीली रोशनी जल रही थी। शामली अब मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। वो दो कदम चली, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। धप। वो सोफे के किनारे गिर गई। उफ, उसके होठों से हल्की आवाज निकली। कमरा जैसे गोल गोल घूम रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिर लड़खड़ा गए। वो दीवार से टकराते टकराते बची। मुझे सोना चाहिए, उसने खुद से बुदबुदाया। उसे लगा शायद आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। वो धीरे धीरे चलते हुए स्विच बोर्ड तक पहुंची। उसकी उंगलियां बटन ढूंढ रही थीं। क्लिक। कमरे की तेज लाइट बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी रह गई थी। शामली लड़खड़ाते हुए वापस सोफे तक आई, लेकिन इस बार बैठने से पहले ही उसका संतुलन बिगड़ गया। वो फर्श पर ही बैठ गई। उसकी पलकों पर नींद और नशे का भारीपन उतर चुका था। बस थोड़ी देर, वो बुदबुदाई और वहीं फर्श से टिक कर बैठ गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उधर होटल के कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंज रही थी। विश्वनाथ अपने कोट को देखते हुए चल रहा था। उसके कोट पर कुछ गिर गया था, शायद ड्रिंक या सॉस। उसके साथ एक आदमी भी था। वो आदमी बोला, सर, अगर चाहें तो सामने वाले कमरे में बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। विश्वनाथ ने दरवाजे को देखा। ठीक है, वो रुका, फिर शांत स्वर में बोला, लेकिन सुनो। आदमी तुरंत सीधा खड़ा हो गया। जी सर, विश्वनाथ ने धीरे से कहा। कुछ घंटों बाद मैं यहीं आराम करने वाला हूं, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, इसलिए इस कमरे के पास कोई नहीं आएगा। आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। जी सर, बिल्कुल। कॉरिडोर में फिर खामोशी फैल गई। दरवाजे के पीछे कमरे के अंदर हल्की चांदनी में शामली फर्श से टिककर बैठी थी। कॉरिडोर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगी पीली लाइटें लंबी परछाइयां बना रही थीं। दरवाजे के पास वही आदमी खड़ा था जिसे विश्वनाथ ने अभी कुछ देर पहले सख्त हिदायत दी थी कि इस कमरे के पास कोई ना आए। उधर दूसरी तरफ से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही पल में जतिन अपने चारों दोस्तों के साथ वहां आ पहुंचा। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी और आंखों में बेचैनी। असल में पार्टी में पहुंचने के बाद भी उनका ध्यान बार बार उसी कमरे की तरफ जा रहा था जहां शामली बंद थी। रोहन धीरे से बोला, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा दोस्त बोला, सच में अगर वो होश में आ गई और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो? तीसरा बोला, या किसी ने उसे देख लिया तो? जतिन ने होंठ भींचे। वो खुद भी थोड़ा परेशान लग रहा था लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने शांत बनने की कोशिश कर रहा था। पहले देख तो लेते हैं सब ठीक है या नहीं, उसने धीरे से कहा। पांचों लड़के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे लेकिन जैसे ही जतिन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया वही आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। सॉरी सर, उसने हाथ आगे करते हुए कहा, आप लोग यहां नहीं जा सकते। जतिन ठिटक गया। क्यों? उसने भौहें से कोड़ते हुए पूछा। आदमी ने सीधा जवाब दिया, इस कमरे में मृदुल सर के खास मेहमान हैं। उसकी आवाज पूरी तरह गंभीर थी, इसलिए यहां किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जतिन और उसके दोस्तों के चेहरे एक पल के लिए सख्त हो गए। रोहन ने धीरे से जतिन की तरफ देखा। जतिन ने फिर कोशिश की, अरे हम बस एक मिनट के लिए। लेकिन आदमी ने सिर हिला दिया। सॉरी सर, मुझे साफ आदेश है, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। जब तक मेहमान आराम कर रहे हैं कोई अंदर नहीं जाएगा। कॉरिडोर में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जतिन ने दरवाजे की तरफ देखा। उसके मन में एक पल के लिए घबराहट दौड़ गई क्योंकि अंदर शामली अभी भी उसी हालत में थी। अगर वो जाग गई या किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो सब गड़बड़ हो सकता था। रोहन ने खीरे से फुसफुसाया, यार ये तो गड़बड़ हो गई। दूसरा दोस्त बोला, कहीं वो आदमी अंदर जाकर देख ना ले। तीसरा बोला, और अगर उसने शामली को देख लिया तो? उनकी आवाज में डर साफ था। जतिन ने गहरी सांस ली। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर वो धीरे से बोला, घबराओ मत। रोहन ने फुसफुसाकर पूछा, कैसे ना घबराएं? अगर शामली को किसी ने उस हालत में देख लिया तो? दूसरा दोस्त बोला, और अगर उसने तुम्हारे भाई को बता दिया तो? तीसरा बोला, भाई फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जतिन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इतना क्यों सोच रहे हो? चारों दोस्त उसकी तरफ देखने लगे। जतिन ने कंधे उचकाए। मान लो अगर किसी ने पूछ भी लिया तो? वो आराम से बोला, तो कह देंगे हमें कुछ नहीं पता। हैरानी से पूछा, क्या मतलब? जतिन बोला, मतलब साफ है, उसने धीमे स्वर में कहा, हम तो पार्टी में थे, हमें क्या पता कौन उस कमरे में गया कौन नहीं गया। तीसरा दोस्त बोला, लेकिन अगर शामली ने हमारा नाम ले लिया तो? जतिन हल्का सा हंसा, उस हालत में? उसने सिर हिलाया, उसे खुद नहीं पता होगा उसके साथ क्या हुआ। चारों दोस्त कुछ पल चुप हो गए। जतिन ने फिर कहा, और वैसे भी, उसने कॉरिडोर के दूसरे सिरे की तरफ देखा, यहां खड़े रहना ही सबसे बड़ी गलती होगी। रोहन ने धीरे से पूछा,
तो अब क्या करें? जतिन ने जेब में हाथ डाला और बोला, जो करना चाहिए पार्टी में चलते हैं, उसने हंसते हुए कहा। ऐसे घबराए हुए चेहरे लेकर घूमोगे तो लोग खुद शक करने लगेंगे, दूसरा दोस्त बोला। लेकिन, जतिन ने उसकी बात काट दी, नो लेकिन, सब नॉर्मल रहो। फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और वैसे भी सुबह तक सब अपने आप शांत हो जाएगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अभी भी हल्की बेचैनी थी लेकिन जतिन की बातों ने उन्हें थोड़ा संभाल दिया था। रोहन ने धीरे से कहा, चलो। जतिन ने आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसके पीछे क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। फिर वो मुड़ा, चलो गाइस। पांचों लड़के कॉरिडोर से वापस पार्टी की तरफ चल पड़े। उधर दरवाजे के पास खड़ा आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। उसने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा, फिर सीधा खड़ा हो गया। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया और अंदर उस कमरे के भीतर रात अब और गहरी होती जा रही थी। कमरे में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की के पर्दों के पीछे से हल्की सी चांदनी भी अब लगभग गायब हो चुकी थी। बिस्तर पर शामली गहरी नींद में पड़ी थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और उसकी सांसें धीमी और भारी चल रही थीं। नशे का असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा धीमे से खुला। विश्वनाथ अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे में नजर दौड़ाई लेकिन कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन ऑन कर दी। फोन की हल्की सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। उसने चारों तरफ देखा। सामने ही बाथरूम का दरवाजा था। विश्वनाथ ने अपने कोट की तरफ देखा जिस पर कुछ गिर गया था। उसने हल्के से बुदबुदाया। फिर वो सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम की लाइट जल गई। कमरे का बाकी हिस्सा अभी भी अंधेरे में ही था। बिस्तर उसी अंधेरे में था और उस पर सोई शामली बिल्कुल स्थिर पड़ी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में कोई और भी आ चुका है। कुछ मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। विश्वनाथ बाहर आया। उसने तौलिए से हाथ पोंछे और कमरे की तरफ देखा। कमरे में अभी भी अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन फिर रुक गया। उसने थकी हुई सांस ली। बहुत थक गया हूं, वो धीमे से बोला। असल में पार्टी, मीटिंग और लगातार लोगों से बातचीत ने उसे पूरी तरह थका दिया था। उसे लगा कुछ देर आराम कर लेना ही बेहतर होगा। वो कमरे में धीरे धीरे चलता हुआ बिस्तर की तरफ आया। अंधेरे की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा बिस्तर खाली है। उसने अपना कोट उतारकर पास की कुर्सी पर डाल दिया। फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। कुछ ही पल में उसने शर्ट उतार दी और उसे साइड टेबल के पास रख दिया। उसकी खुली छाती पर हल्की ठंडी हवा लग रही थी। वो थकान से लगभग टूट चुका था। बस थोड़ी देर, उसने खुद से कहा। उसने फोन साइड टेबल पर रख दिया। कमरे में फिर से लगभग अंधेरा हो गया। विश्वनाथ बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। थकान इतनी ज्यादा थी कि उसे लगा कुछ ही मिनटों में नींद आ जाएगी। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। उसकी भौंहें हल्की सिकुड़ गईं। वो खुशबू बहुत कोमल थी, जैसे किसी महिला के परफ्यूम की। विश्वनाथ ने धीरे से सांस ली। खुशबू अब और साफ महसूस हो रही थी। ये, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा जैसे ये खुशबू उसने पहले कहीं महसूस की है, लेकिन वो पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा था। उसने थोड़ा करवट बदली और तभी अचानक एक मुलायम हाथ उसकी खुली छाती पर आकर टिक गया। विश्वनाथ का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। कौन? वो झटके से देखा। कमरा अभी भी अंधेरे में था। उसका दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत साइड टेबल पर रखा फोन उठाया और स्क्रीन ऑन कर दी। फोन की रोशनी सीधे उस हाथ पर पड़ी और वो कुछ सेकंड तक उसी हाथ को देखता रह गया। वो एक बेहद नाजुक हाथ था। उंगलियां लंबी और पतली और नाखून बेहद खूबसूरत और सलीके से सजे हुए। स्पष्ट था वो किसी लड़की का हाथ था। विश्वनाथ की आंखों में हैरानी उतर आई। कमरे में अभी भी सन्नाटा था और फोन की हल्की रोशनी में वो हाथ अब भी उसकी छाती पर टिका हुआ था।